Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Deranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
अरे जिसका मुख बंदा है पानी कैसा पिएगा, तो उसको लगा कि हो इससे मुख बंदा है तो पानी नहीं पिएगा, बोल के लगाम निकाल देता है। अभी लगाम निकालते ही घोड़ा बिना पानी पीते ही भाग गया। भाग गया तो फिर वो चिल्लाने लगा, तो हिंदी में बोल सकते, मैं मराठी में बोलता हूं उसका वर्णन, आओ आओ तुम्ही। सबको बहुत खड़े थे वहां लोग, आओ आओ तुम्ही, ज्याच्या घरी हो तो आम्ही, त्याला जाऊन सांगा तुम्ही, याच्यातलं गेलं, वो हिला रहा है अपना लगाम, याच्यातलं गेलं, इसमें से चला गया। अहो आप लोग, जिसके घर में मैं था उसको जाके आप कहिएगा इसमें से चला गया। आप मैं, इसका भी नाम पता नहीं है, सेठ का भी नाम पता नहीं है, क्या गया ये भी पता नहीं है, और किसमें से चला गया ये भी पता नहीं है। तो इसी प्रकार हम भी अपना जो स्वरूप था, सच्चित आनंद स्वरूप, उसको भूलने वाला ऐसा ही व्यक्ति है व्यवहार में। तो अविद्या, काम, कर्म, काम का अर्थ है कामना, अनेक प्रकार की वर्णन अपना, कभी कभी ये कामनाओं के बारे में आता है, सुरसा का मुख जैसा फैलता रहता है, इसी प्रकार मनुष्य की कामनाएं आशा ही फैलती रहते हैं। एक आशा समाप्त होती न होती है, होने से पहले उस 10 आशा को जन्म देकर ही समाप्त होती है। जैसे एक तरंगे उठती है तो कई तरंगों को आगे जन्म देती है, तब वो शांत होती है। तालाब में नाव जाती है, हम वाराणसी में देखते हैं बड़ी बड़ी नौकाएं जाती है, स्टीमर जाती है कभी, तो लहरें उठती है क्या नहीं, तो एक पहली तरंग उठती है तो वह तरंगे अनेक तरंगों को जन्म देती है और समाप्त होती है। इसी प्रकार ये हमारा काम है, और फिर काम का जो कर्म हो जाएगा तो उसका फल, इस सब में राग द्वेष आदि के माध्यम से गुरु भार आक्रांत, इन सबसे वह बोझिला बन जाता है। जैसे किसी के सिर पर बोझ रख दिया जाए तो चलने में बड़ा उसको कष्ट हो जाता है, इतना भार मैं लेकर कैसा चलो, ये बहुत बड़ा बोझ होता है। तो ये बोझ से आक्रांत व्यक्ति डूब रहा है, तो वर्णन करते हैं कैसा डूब रहा है, गुरु भार आक्रांत, माने बहुत बड़ा ये बोझ है, इस बोझ से वो अपना डूब रहा है एक प्रकार से। कैसे तो वर्णन करते हैं, आलाबो रिव समुद्र जले निमग्न। आलाबो, आलाबो का अर्थ होता है जैसा एक तुम्बा रहता है, तुम्बी भी यहां बोलते हैं, और हम लोग बड़ी जो काशी फल होता है क्या नहीं, बड़ा कद्दू सूख जाता है, और सूख जाने के बाद में बच्चे उसको, हम लोग बचपन में ये जो लौकी होती है दूधी, वो भी बड़ा हो जाता, जब सूख जाते हैं तो एकदम हल्का होता है, ये सब फल सूखने पर एकदम हल्के होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, सीखने के लिए उसको रस्सी बांध देते हैं, और रस्सी में वो घुपते हैं और अपने पेट में बांधकर सब तैरने के लिए सीखते हैं। हम लोग पहले सब देहात में आज भी उसी से तैरते हैं, कोई तैरने के लिए सिखाने की जरूरत नहीं है, उसके पेट के लिए बांधते और ऊपर से फेंक देते हैं, क्योंकि वो डूबने वाला तो नहीं है। लेकिन उसी को यदि ज्यादा भार होगा तो अंदर जाएगा नहीं, वो डूबने की महसूस करेगा, ऊपर उठने के लिए ऊपर उठता, क्योंकि उसका स्वभाव है पानी तो अंदर जाएगा नहीं, हल्का है, लेकिन ऊपर बोझ जब हो जाता है तब वो डूबने का तरीका लगता है। जैसे आपने टायर का चाक, अपना गाड़ी का चाक पंचर जब होने लगता है, मैं हवा कम होती है तो क्या होता है, दबते रहता है। इसी प्रकार ये भी जीवात्मा इसमें दब रहा है, ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है और दब रहा है, जैसा वर्णन किया उस आलाबू को, उत्तुम्बी को ज्यादा भार होने के बाद में वह नीचे जाने का, अपना नीचे जाती है और वह ऊपर आने का प्रयास करती रहती है। नीचे जाना उसका स्वभाव नहीं है, लेकिन नीचे किसके कारण जा रहा है, वजन के कारण। उसका स्वभाव क्या है, ऊपर उठने। इसी प्रकार जीव का स्वभाव है सुखी होने का, और ये दुख आ गया तो दुख का स्वभाव नहीं है, तो दुख से ऊपर उठने का यह स्वभाव क्या करेगा, नहीं नहीं प्रयत्न करेगा, जैसा उसका स्वभाव है कि लौकी का सुखी हुई लौकी का ऊपर उठने का स्वभाव है, लेकिन वह अंदर जा रही है किसके कारण, अधिक बोझ के कारण। इसी प्रकार व्यक्ति का मूल स्वभाव सुखी होना ही है। जो भी कर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं हम लोग, उसका मूल उद्देश्य क्या है, सुख से जीवन में रहना। और अधिक ये दुख आने लगते हैं तब इस दुख से छुटकारा पाने का ही तो प्रयास करता है। इसी प्रकार ये जीवात्मा अविद्या काम कर्म आदि बड़े बोझ से ये दबा हुआ है और प्रयास करता है उठने के लिए तुम्बे की तरफ निश्चित। लेकिन ये डूबता कैसा है, वो तो हो गया तुम्बा जो है अधिक बोझ के कारण। ये बोलते हैं निमग्न होने के कारण निश्चय न देहात्म भावम आपन्न, अब ये काम क्रोध आदि सब दोषों से युक्त होकर इस देह में देहात्म भावम आपन्न, मन इस देह ही मैं हूं। अब ये देह मैं हूं बोलने पर शरीर को कुछ भी हो गया तो किसको हो गया, मुझे हो गया। मैंने जो भी शरीर को हो जाता है, शरीर का धर्म है कटना फटना हो जलना आदि सब इसको, क्योंकि पांच महाभूतों का बना हुआ भौतिक शरीर है तो भूतों का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, शरीर के ऊपर ही पड़ेगा, जल का स्वभाव पड़ेगा और पृथ्वी का स्वभाव, ये पृथ्वी के तो हथियार है, ये सब हम लोग बैठे हुए हैं। जल का प्रभाव जैसे कपड़ा जो है जल में डुबाते हैं तो दूसरा दिन देखिएगा एकदम चिकना होकर गंदा आ जाता है। मेरे पार्थिव अस्त्र जलीय अस्त्र तेजसी अस्त्र किसको जला सकते हैं, वरुण अस्त्र आदि भौतिक जला को जला सकते हैं। न हन्यते हन्य मान्य शरीर नैनम छिंदंति सहस्त्राणी नैनम दहति पावका न चयनम क्लेद यंत आपो नैनम शोकयती क्या शोषयती मारुता शोषयती, मन ये चारों के चारों महाभूतों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है और इसके ऊपर पड़ता है क्योंकि उससे बना हुआ है। तो इसी के कारण ये भी देह भाव आपन्न होने के कारण ये सभी दुख महसूस करता रहता है। कैसा कैसा महसूस करता है, ये किसका अर्थ बता रहा है, निमग्न का अर्थ माने आसक्त होने का अर्थ बता रहा है। अयम एव अहम, ये देह ही मैं हूं, देह ही मैं हूं और स्वाभाविक है 99% जीव जो है इस शरीर को ही क्या मानता है, मैं मानता है, मैं देह के अलावा दूसरा कोई मैं उसको पता ही नहीं है। इसलिए तो मनुष्यानाम सहस्रेशु बोल दिया कश्चिद यतते सिद्धे, अमुष्य पुत्र और अहम अमुष्य मैं उसका पुत्र हूं, अस्य नप्ताह नप्ता करता है नाती, इसका ये नाती है या तो मैं उसका नाती हूं। कृश अहम कृश, मैं तो चेतन है लेकिन इस शरीर का कृश भाव किसके ऊपर लेता है, मैं के ऊपर लेता है, मैं कृश हूं। कृश का अर्थ होता है पतला, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, किसको बोलते हैं कृश, शरीर का धर्म है गलना और ये सोचता है कि मैं गल गया हूं। स्थूल अर्थात मैं स्थूल हूं, गुणवान अर्थात मैं गुणी हूं, क्योंकि प्रकृति के गुण प्रकृति में आ जाते हैं, हर एक गुण कौन सी भी चाहे वेदांत की लीजिएगा चाहे न्याय की लीजिएगा किसी की भी गुण लीजिएगा, ये किस में आएंगे, शरीर में आएंगे, मेरे में नहीं आते हैं, लेकिन वह शरीर को लेकर मैं गुणवान मैं निर्गुण हूं तो किसी को कुछ नहीं आता है, अरे हम तो निर्गुणी हैं। जैसे हमारे शरीर के बोलते हैं अरे थोड़ा सा कुछ गाओ ना बढ़िया, अरे बोलते हम कहां कलाकार है भाई, हमें ना बजाने के लिए आता है ना गाने के लिए आते हैं, तो उस विषय में तो हम कैसे हैं निर्गुण, उस विषय में हम निर्गुण हैं। तो गुण रहित सुखी अपने को सुखी महसूस करता है, दुखी महसूस करता है, मैं दुखी बोलते रहता है। इत्येवं प्रत्ययः, इस प्रकार का यह प्रत्यय माने अनुभव करता है महसूस करता है उसको ज्ञान हो जाता है। न अन्यः अस्ति अस्मात् इति, अस्मात् माने इस शरीर से, अस्मात् शरीरात् अन्यः न अस्ति, इस शरीर से अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। माने शरीर ही सब कुछ है, अपना शरीर ही सब कुछ है, दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। एक प्रकार से ये चार्वाक का सिद्धांत, मेरा अलग और मैं अलग, पर अस्मात यही मेरा है यही मैं। चार्वाक भी क्या है, चार्वाक की ममता छोड़ते, दूसरों के ऊपर से ममता छोड़ के केवल शरीर ही सब कुछ अपना है और इसी के लिए सब कुछ करते रहो, तो इसलिए चार्वाक भी सिद्धांत अपना शास्त्र है। माने ममता छोड़कर मैं में तो आओ, क्योंकि दो बड़े अहंता ममता ही छोड़ना कठिन है। तो ममता कभी कभी छूट सकती है लेकिन अहंता नहीं छूटती। अहंता तो स्वरूप के ज्ञान से ही छूटती है, जब तक उसका नहीं होते तब। तो ये सब कुछ मैं समझते रहते हैं, अस्मात अन्यः न अस्ति इति, मनी इस शरीर से बढ़कर या शरीर से भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है। इस प्रकार इस शरीर के ऊपर उसका क्या है, तादात्म्य है। और यह अविद्या के कारण ही है। एक उदाहरण दिया जाता है ना, एक बंदर का उदाहरण दिया जाता है। जो बंदर जो होता है अपने बच्चों से बड़ा प्यार करता रहता है। तो दूसरे ने कहा, एक महात्मा ने, अरे वो क्या प्यार करता है, वो तो अलग है, उसका प्यार फिर कुछ नहीं करता है, सब वो वेदांत का सिद्धांत बताया, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, देखो ये बंदर क्या है उस बच्चे से लेकिन कितना प्यार। फिर वो बंदर प्रयोग करने के लिए एक थोड़ा सा पानी का हौद बनाया गया, पानी भर दिया, तो जैसा जैसा पानी ऊपर आने लगा तब तक तो बच्चे को कंधे पर लेते रही, और पानी ज्यादा हो गया, अपने पैर लगने नहीं लगे थे, ये डूबने लगी, तब क्या करते है बंदर, बच्चे को नीचे और स्वयं ऊपर। मन ये अपने शरीर में, इसके बढ़कर दूसरा कोई भी नहीं है। अभी शरीर का धर्म कैसी कैसे बोलते हैं, जायते म्रियते संयोजते च संबंधी बांधवी जायते म्रियते संयुज्यते च संबंधी बांधवी ही। स्वाभाविक है, ये शरीर में रहते हुए जो अपना बांधव है उसके साथ ममता करता है, फिर इधर से समाप्त करके दूसरी तरफ उत्पन्न करता है, उत्पन्न होता है, तो वहां उसके बांधव लोग अलग आ जाते हैं और उनके साथ संयुक्त होता है। माने मरना जन्मना मरना और कहीं ना कहीं अपनों से अटकना जुड़ जाना, यही तो है, अटकना कहिए जुड़ जाना, यही इसका वास्तविक स्वभाव है, ये बता रहे। अतो अनीशया न कस्यचित समर्था अहम्। ये क्यों ऐसा करता ये सब, बोले अनीशया, मूल कारण बोलते हैं अनीशया। ईशया ईश शब्द है, तो ईश माने शक्ति, ईश्वर के पास भी शक्ति है ईश, और अनीशया माने जो शक्ति नहीं है, सामर्थ्य रहित होने के कारण, इसलिए बोले न कस्यचित समर्था अहम्। मूल में अनीशय शब्द है ना, तो अनीश का अर्थ करते हैं न ईश इति अनीश, न अश्व इति न अश्व इति अनस्व, न अश्व इति अनस्व, न ईश इति अनीश शब्द बना, क्यों आगे ये है इधर ना है तो लगा अनीश। तो इसी प्रकार इसको बोलते हैं नहीं तत् पुरुष समास, तो अनीश माने जो शक्ति नहीं है, शक्ति सामर्थ्य नहीं है वो, इसलिए भाष्यकार ने बोल दिया न कस्यचित समर्थः अहम्, मैं कस्यचित न समर्थः, मैं किसी भी कार्य करने के लिए समर्थ नहीं हूं, इस प्रकार वो समझता रहता है अज्ञान के कारण। क्या समझता है वो, अहम पुत्र बोलते हैं अहम न समर्थिक, आगे पुत्र मम नष्ट, अब बोलते रहता पुत्र चला गया तो मेरा पुत्र चला गया, मृता मे भार्या मृता, मेरी पत्नी मर गई, किम ये जीविते नाम, अब मेरा जीना क्या है, इसी को लेकर कई बोलते हैं। हा कष्टम जीर्ण वयसा पुत्रोपि मित्रायते भार्या न शुश्रूषते। पूरा श्लोक तो मुझे, मैं यहां बोलते समय कई ऐसा होता है कि केवल आपको दिग्दर्शन थोड़ा सा ही श्लोक आ जाता है, पूरा श्लोक उठता नहीं है, उतना मेरे में सामर्थ्य नहीं है। जैसे बड़े महाराज जी को देखते उनको सुनिएगा तो वो पूरा का पूरा श्लोक बोलेंगे, चाहे मेरे गुरु जी लीजिएगा, चाहे पूज्य अखंडानंद महाराज जी लीजिएगा, इनके प्रवचन में सुनेंगे तो कई आधा श्लोक आएगा नहीं, लेकिन हमारे आधा का भी आधा थोड़ा सा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बड़े बुद्धिमान है, हो सकता है उनके सामने अब अपना अज्ञान छिपाने के लिए बोलना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। हा जीर्ण वयसा कष्टम पुत्रोपि मित्रायते, एक नीतिकार बोलते हैं कि जीर्ण वयस में बहुत कष्ट होता है उसको, अरे क्या करें, हमारे पुत्र भी अब मित्र के तरह व्यवहार करने लगे, मैंने मेरा वाक्यम न अद्रियते जनहा, बांधवे कोई मेरा वाक्य, मैंने जो बोलता हूं तो उसको कोई मानते नहीं, बोल चुप बैठो, आपको क्या समझता है। तो इस प्रकार ये जीर्ण वयस की अवस्था होती है। और दूसरा यहां दत्तात्रेय महाराज का लीजिएगा, 24 गुरुओं में से एक कबूतर को गुरु बनाया, और आप लोग हमेशा सुनते हैं बच्चे चले गए और वो भी चली गई कबूतरी जाल में, और ये सोचता रहता है कि मेरी संतान भी चली गई और ये चली जाने से मैं विदुर क्यों रहूं, उससे अच्छा है मैं भी चला जाऊं। तो इस प्रकार ये भार्या में मृता किम ये जीवितेन इत्तम इति एवं दीन भाव, दीन भाव होकर उसी को फिर बोलते अनीशः, मनी सामर्थ्य रहित होने के कारण तया सोचती संतप्यते, अर्थात संताप करता है सामर्थ्यहीन होने के कारण, पर सामर्थ्य नहीं है शोक करने का। दूसरा कारण बोलते हैं मुह्यमानः, मुह वैचित्य धातु है, मुह वैचित्य, वैचित्य मैंने विक्षेप, जहां मुह रहता है वहां विवेक रहित हो जाता है, मुह वैचित्य माने मोहित होने, विचित्रता चित्त की हो जाना। ये मुह्यमानः अनेकैः अनर्थ प्रकारैः अविवेकतया विचित्रताम् आपद्यमानः, मैंने विचित्र अवस्था को, इसलिए मुह वैचित्र धातु का अर्थ भाष्य कारण ये बताया। इस प्रकार मोहग्रस्त होकर अनेक प्रकार के अनर्थों को वो भोगते रहता है, उस दशा को अवस्था को प्राप्त करता है, और सोचती बाद में अनीशया मुह्यमाना सोचती, अनीशया मुह्यमाना सोचती, अनीशय का अर्थ इतना बताया कि वहां से लेकर सब देह में आसक्त करता है, ये यहां तक अनीशया हो गया। तो मुह्यमान अर्थात मुह वैचित्य धातु होने के कारण, अविवेक होने के कारण, अविवेक से अनेक प्रकार के अनर्थ को प्राप्त करता है, और उसके बाद में सोचती संतप्त होता है। एवं स एव, एवं ने स एव, स एव माने जो इस शरीर में निमग्न है मुह्यमान है, वह स का अर्थ है वह सर्वनाम है प्रोणाम है, स एव प्रेत त्रियं मनुष्यादि योनिषु आपतन दुःखम आपन्नः कदाचित अनेक जन्म शुद्ध धर्म संचयन निमित्तं केनचित परम कारुणिकेन दर्शित योग मार्गः अहिंसा असत्य ब्रह्मचर्यः सर्व त्याग समाहित आत्मा सन् समाधि संपन्नः। लंबा चो यहां देखिए, स एव वही प्रेत त्रियग मनुष्य अनेक योनि को भटकता रहता है, क्योंकि इस शरीरों में मोह होने के कारण, आसक्त होने के कारण मरते वक्त भी इन्हीं में बुद्धि रहती है, क्या बोलते हैं आसक्त होता है। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजतंते कलेवरम तम तमय वैति कौंतेय सदा तद भाव भाविता, जो अंत में मति होती है वैसे ही उसकी गति होती है। इसी का अभी जब इस शरीरों में ही सब अहंता ममता कर दिया है, इस भूत को ही अपना मान लिया है, तो ये क्यों न भूत बनेगा। तो इसलिए तो बोल रहे ना प्रेत त्रियक मनुष्य आदि, माने इस भूत को ही भौतिक वस्तु को ही अपना मान लेने के कारण उसको किस योनि में जाना पड़ेगा, भूत योनि में जाना पड़ेगा। और इसका सुंदर उदाहरण आप लोगों के सामने किसका है, धुंधुकारी का है। अनेक योनि को ये प्राप्त होता हुआ, और ये सब योनि कैसे हैं, दुख देने वाले योनि से दुखम आपन्ना, दुख को प्राप्त करता है। लेकिन एक मनुष्य शरीर ऐसा है कि वहां मनुष्य शरीर बड़े भाग से मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो इसकी कभी कभी बड़ी महिमा है गाई गई है, तो इसका फायदा मिलता है। कब फायदा मिलता है उसके लिए बताते, कदाचित अनेक जन्म शुद्ध धर्म संचयन, अनेक जन्म में किया हुआ कुछ ना कुछ पुण्य होगा और वह पुण्य का उदय हो जाता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। हे तात, कल्याण कार्य किया हुआ, कल्याण माने अच्छा कार्य, शुभ कार्य, धर्म किया हुआ कभी भी समाप्त होता नहीं है। माने अशुभ कर्म कभी कभी समाप्त होता है, लेकिन शुभ कर्म तो अवश्य फल दिए बिना रहता नहीं है, क्योंकि शुभ कर्म फिर शुभ कर्म कर्म करते करते अशुभ कर्म वो ऐसे ही चले जाते हैं, शास्त्र में आ जाते हैं। जैसे अग्नि के सामने ये चिंगार आदि जल के भस्म हो जाती है, इसी प्रकार शुभ कर्म भी जो अशुभ वासना आदि होती है उनको जला के समाप्त कर देता है। इसी को बोलते हैं कि अनेक जन्म का कोई ऐसा एक धर्म होता है उसके कारण उसको केनचित परम कारुण केन अर्थात गुरु मिल जाते हैं। इसके बारे में बहुत सुंदर एक श्लोक है, सत्कर्म परिपाकाते करुणा निधिन उद्धृता प्राप्य तीर तरु छायाम विश्राम्यति यथा सुखम, पंचदशी का है तो कल देखेंगे समय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।